एक पीपल का चमत्कार, एक मुसलमान मिस्त्री की जुबानी अपनी आंखों देखी बिल्कुल सत्य घटना। लोग पीपल को यूं ही मानते हैं, मुसलमान मिस्त्री की आंखें देखी घटना लिखी है, कल्याण में लिखी, कल्याण गीता प्रेस की पुस्तक। बाबा मलुकदास जी ने कहा है, हरी डाल मत तोड़िए लागे सूखा बाण। दास मलु का यूं कहे, अपनों सो जिए जान, हरी डाली को मत तोड़ो। मलुकदास जी ने कहते हैं, अपना जैसा चित्त होता है, जीव होता है, वैसा उसमें भी जीव को देखो। दूसरे ने यह भी कहा, साधु ऐसा चाहिए जो दुखे दुखावे नाए, फूल पात तोड़े नहीं रहे बगीचे माए। बगीचे में भी रहना पड़े तो भाई किसी भी वृक्ष को किसी प्रकार से दुखावे नहीं। महाराज जी एक बार जोधपुर में चातुर्मास में ऐसी बिल्डिंग में रहे, खूब धूप लगी हुई थी, तो महाराज जी धूप के पास वाले ही टहल रहे थे घूमने के लिए। तो लोगों ने कहा, महाराज धूप पर ठहरो, धूप की ठंडक आपके चरणों में लगेगी और मस्तक पर जाएगी, ठीक रहेगा। महाराज जी कुछ बोले नहीं। बाद में महाराज जी ने कहा कि देखो यहाँ जीव रहते हैं, इन जीव के ऊपर घूमेंगे कितने जीव मरेंगे, बरसात का समय है, वैसे भी धूप के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, इसलिए नीचे फिरना ठीक है। और धूप भी तो एक जंतु ही है, जो धूप के अंदर भी तो जीव है, ठीक नहीं है। अब लिख रहे हैं, आज के बाबू लोग तुलसी पीपल आदि की आदि को पूजना और वृक्षों में जीव मानना बेकार की बात बताते हैं। कहते हैं ये तो दकियानुसी है, ये तो पुराण पंथियों की बातें हैं, पर भूत वही जो सिरचट बोले। इस कहावत के अनुसार एक मुसलमान ने पीपल में जीव होने और उन्हें भी हमारे भांति काटने पर दुख होने तथा हरे पीपल को मानवता को तिलांजलि देकर लोभ के वशीभूत होकर काटने पर प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाने की अपने आंखों देखी घटना हमको सुनाई, वो हम यहाँ दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों की पुराणों की बातें ऐसी ऐसी घटनाओं के कारण से अक्षर से सत्य सिद्ध होती है और मानवता को तिलांजलि देने का क्या दुष्परिणाम होता है यह इस घटना के अंदर बताया गया है। सन 1957 की बात है, पिलखुआ में हमारा एक मकान बन रहा था। देखो बात आएगी इसमें, सब बात मुजफ्फरनगर के आसपास की क्यों देते हैं, वहां के एक संत थे राम शरण दास जी, वो बड़े अच्छे संत थे, संत महात्माओं का संग करते, कई बातों को लाला करके बताते थे, तो वो अपने वहीं ज्यादा घूमते, तो वो पिलखुआ में ही रहते थे, तो वो बस बातों का संग्रह किया, अब कहां तक सारी दुनिया में कहां तक भेजे, और एक जगह से जो बात हो, अब चावल सिद्ध हुए नहीं हुए तो एक चावल को देखते हैं, कोई एक एक चावल को थोड़ी देखते हैं, सबको एक चावल देख लिया, सिद्धांत तो सिद्ध हो ही गए ना। तो सन 1957 की बात है, जून की बात है, पिलखुआ में हमारा मकान बन रहा था। काम करने वालों में एक राज था जो जाति का मुसलमान था, उसका नाम था मियां सईद खां, जो पिलखुआ का ही रहने वाला था। एक दिन दोपहर की बात है, किसी ने हमें मियां सईद खां के सामने आकर सुनाया कि अमुक जगह है, सरकार की ओर से बंदर पकड़े जा रहे हैं और पकड़ने वाले उन्हें बड़ी बड़ी बुरी यातनाएं देकर पकड़ते हैं तथा फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके अमेरिका मरने के लिए भेज देते हैं। यह सुनकर सभी को बड़ा दुख हुआ। तो हम भी वहीं खड़े थे, इस पर मिस्त्री मियां सईद खान ने कहा, भक्त जी यह तो बंदरों की बात है, उन्हें दुख होता ही है, और जब दुख होता है तो बेचारे रोते हैं, चिल्लाते हैं, की की करते हैं। जहां पर बंदर पकड़े जाते हैं वहां बड़ी भारी बीमारी महामारी फैलती देखी गई है। यद्यपि हम जाति के मुसलमान हैं तो भी जो बात सत्य है वो तो सत्य ही रहेगी, ये तो कहनी पड़ेगी। यह तो हुई बंदरों की बात। भक्त जी हमने तो एक हरे पीपल के वृक्ष की एक बड़ी विचित्र घटना अपनी आंखों से देखी है और अनुभव किया है कि पीपल में भी हमारी तुम्हारी तरह जीव होता है तथा हमारी तुम्हारे भांति उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। वह बोलता भी है और उसके काटने का फल, सताने का, विश्वासघात करने का फल तुरंत ही मिलता है। वाकई में वह देवता है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब तो हम और आश्चर्य में डूब गए, हमारे अंदर उत्सुकता हुई। हमने कहा, अच्छा मियां सईद खान जी, जो तुमने अपनी आंखों से देखा है वो सच का सच और ज्यों का त्यों हमको सुनाओ। सईद खान ने कहा कि लो सुनो, जो हमने आंखों से देखा है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, इस और कहीं की बात नहीं कहते, हम इसी पिलखुआ के पास की और बिल्कुल हमारे आंखों देखी सत्य घटना सुनाते हैं। एक बार हमारे एक मुसलमान साथी बढ़ई ने, जिसका नाम दलवीर खां था, एक राजपूत से एक बिल्कुल हरा पीपल खरीदा और उसकी कीमत के 100 रुपए राजपूत को दे दिए। उसने एक दूसरा हिस्सेदार भी साथ में कर लिया जिसका नाम था इसाक खां बढ़ई। दलवीर खां और इसाक खां में आपस में यह तय हुआ कि अपने दोनों जने मिलकर पीपल को काटेंगे और उसमें जो नफा होगा अपने दोनों मिलकर बांट लेंगे। काटने का दिन भी तय कर लिया कि इस दिन काटेंगे। जब पीपल के काटने का दिन आया तब उसके काटने से ठीक पहले दिन की, पहले दिन की रात्रि को दलवीर खां को स्वप्न में वही पीपल दिखाई दिया और उसने दलवीर खां से कहा कि दलवीर तू मुझे काटे मत, सताए मत, तू मुझे अपना समझकर छोड़ दे, और तूने जो मेरे मोल लेने में 100 रुपए उस राजपूत को दिए हैं वे सब रुपए और तुझे मेरे काटने पर मुनाफे के रुपए मिलते हैं वे भी तुझे मिल जाएंगे। मेरी जड़क में अमुक जगह सोना रखा हुआ है, तू जाकर खोद कर उसे निकाल ले और बेच कर रुपया कर ले, पर मुझे मत काट, जीवन मुझे जीवन दान दे दे। दलवीर खां बढ़ई जागा और स्वप्न की बात याद करके अचरज में डूब गया। उसने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा हिंदू संबंधी स्वप्न देखा ही नहीं था। पहले तो उसने स्वप्न को झूठा ही समझा और विश्वास नहीं हुआ कि कहीं पीपल में भी जान होती है। अरे क्या पीपल भी मनुष्य की तरह बोलता है? क्या वो भी स्वप्न में आकर बोल सकता है? और क्या उसको भी काटने से या न काटने से सुख दुख होता है? ऐसा उसको विश्वास नहीं हुआ। पर बाद में सोचा कि उस पीपल ने अपनी जड़ के अंदर सोना बताया है तो देखते हैं कि सोना है कि नहीं। यदि सोना है तब तो ठीक है, और यदि सोना नहीं मिले तो सब मामला गड़बड़ है। अपने क्या बिगड़ता है, सोना मिल जाएगा तो अच्छी बात, तो ले आएंगे। और नहीं तो फिर चले जाएंगे। ऐसा विचार करके वो उठा और चुपचाप उस पीपल के पास जा पहुंचा। उसने पीपल के बताए स्थान पर खोदकर देखा तो सचमुच स्वप्न सत्य निकला और उसे मिट्टी में दबी पीली चमचमाती सोने की सलाख प्राप्त हुई। अब तो उस मियां दलवीर खां के हृदय में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और फूला नहीं समाया। हरे वृक्ष में भी जान होती है और वे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं और वे भी हमारी तरह स्वप्न में आकर के बोलते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो गया। वह अपने घर आया और अपनी बीबी को सब बातें बता दी, पर फिर उसके मन में पाप सवार हो गया और उसने मानवता से गिर करके लालच बुरी बलाए के अनुसार सोचा कि यदि यह बात मेरे दूसरे हिस्सेदार को मालूम हो गई तो वह भी इसमें से आधा रुपया मांगेगा, सोने में से आधा सोना मांगेगा। इसलिए सोना तो मेरे को मिल ही गया और इस बात को गुप्त रखें, किसी को सुनावे भी नहीं। उसने अपने पत्नी के अलावा किसी को भी ये बात नहीं कही, बिल्कुल गुप्त रखा। अब पीपल काटने का दिन था ही, वह जब आया तो इसहाक अपनी कुल्हाड़ी लेकर दलवीर खां के पास पहुंचा और कहने लगा, दलवीर चलो पीपल को काटने चले। वो दलवीर इतना कृतघ्न निकला और मानवता से इतना गिर गया कि जब पीपल ने इससे प्राण की भिक्षा मांग ली और बदले में इसे सोने के रूप में भरपेट रुपए दे दिए, तब भी हाय रे लालच, उसको संतोष नहीं हुआ, तनिक भी दया नहीं आई। वस्तुतः उसका कोई समय ही बुरा आने वाला था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह कुछ भी विचार न करके कुल्हाड़ी उठा ली और इसहाक के साथ हो गया। वृक्ष काटने से पहले बढ़ई लोग गुड़ बांटा करते हैं। हम भी उस दिन वहां ये सोचकर जा पहुंचे, वो मुसलमान बता रहा है, हम भी इसलिए चलो मेले के हैं, चलो मेल के हैं, हमारे जाति के हैं और रास्ते में मिलते चलेंगे और गुड़ भी मिल जाएगा, चलो हम भी जाओ। तो हम भी जाकर बैठ गए और वे दोनों आए और पीपल की कटाई करने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही दोनों बढ़ईयों ने पीपल को काटने के लिए कुल्हाड़ी लगाई, कुल्हाड़ी के लगते ही एकदम पीपल के अंदर से खून के फवारे छूटे और हम सब वहां जो लोग खड़े थे, हमारे शरीर पर कपड़े पर खून के दाग लग गए। सबको आश्चर्य हुआ, किसी ने भी आज तक अपने सारे जीवन में ऐसी महान आश्चर्यजनक घटना नहीं देखी न सुनी। वृक्ष में से इस प्रकार खून के फवारे एकदम छूटना, यह तो आश्चर्यजनक भी घटना थी और एकदम नई घटना भी थी। दलवीर खां और इसहाक खां ने अपने जीवन में इससे पहले एक नहीं सैकड़ों हरे दरखत काटे होंगे, पर आज तक किसी भी वृक्ष में से इस प्रकार खून की धारा बहती हुई छूटती हुई नहीं देखी। ये क्या हुआ और कैसे क्यों हुआ, ये रहस्य किसी के भी समझ में नहीं आया। दलवीर खां बढ़ई को तो सब मालूम था क्योंकि स्वप्न में उसने वृक्ष पीपल ने बता दिया था, पर दलवीर तो मानवता को तिलांजलि दे दिया, वो लोभ के वशीभूत हो गया, इसलिए वो इस रहस्य को क्यों किसी को बताए। वह तो सबके सामने बिल्कुल ऐसा ही बना रहा जैसे और लोग हैं वैसा ही वो है, जैसे किसी को कुछ पता नहीं ऐसे हमको भी कुछ पता नहीं। अब भक्तराज जी आप सुनते जाइए, होनी बड़ी प्रबल होती है और जो होना होता है वो होकर ही रहता है। पीपल के द्वारा इस प्रकार सबके सामने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाए जाने पर भी दलवीर को होश नहीं आया और वह उसे काटने से बाज नहीं आया। उसने कोई परवाह नहीं की और फिर कुल्हाड़ी काटना शुरू कर दिया। दलवीर खां बढ़ई के एक ही लड़का था और वो बिल्कुल अच्छा बड़ा तंदुरुस्त था। उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, पर पीपल काटने, पीपल के साथ विश्वासघात करने का बुरा फल आज उसे भोगना था। कहा गया है, तुलसी हाय गरीब की कभी न खाली जाए। ज्यों ज्यों जंगल में कुल्हाड़ी चलाई जा रही थी और पीपल को काटा जा रहा था, त्यों त्यों दलवीर खां के इकलौते लड़के की अकस्मात उत्पन्न हुई बीमारी बढ़ती जा रही थी। और ज्यों ही शाम तक पीपल पूरा काटा गया, त्यों ही उधर उसका लड़का मर गया। हाहाकार मच गया। जो लड़का कल तक बिल्कुल चंगा था, एकाएक कैसे मर गया, इस रहस्य को कोई भी नहीं जान सका। सारे गांव के लोग धीरे धीरे उसके दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। दलवीर खां की स्त्री को इस सत्य घटना का पता था कि किस प्रकार मेरे पापी पति ने पीपल के साथ विश्वासघात किया। उसने सोचा कि पीपल के द्वारा स्वप्न में अपने प्राणों की भीख मांगने पर भी और बदले में सोने की सलाख दे देने पर भी उसने पीपल को नहीं छोड़ा तथा मानवता से गिरकर घोर दानवता का कांड किया। उसी का ये अति भयंकर दुष्परिणाम है कि उसका इकलौता बेटा बिना बीमारी के देखते देखते मर गया। उस माता का हृदय टूट गया, फूट फूट के रोने लगी, छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा गांव इकट्ठा हो गया। दलवीर खां को भी आकर किसी ने खबर दी। वह भी जिस हालत में था भगा भगा आया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। और जब वो स्त्री के वहां पहुंचा तो पति को आते देख वो स्त्री जोर जोर से चिल्लाई, चिल्लाने लगी और उसने सबके सामने शर्म छोड़ करके अपने पापी पति की छाती में हाथ मारकर उसकी काली करतूतों का भंडा फोड़ करना प्रारंभ किया। और उसने सबके सामने रोते हुए कहा, मेरे इकलौते बेटे को और किसी ने नहीं मारा है, ये सामने खड़ा इसका पापी बाप ही इसके मौत का जिम्मेदार है। इस पापी बाप ने अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतारा है, ये बेटे का हत्यारा है। इस पापी से जब पीपल ने रात में स्वप्न देकर अपने प्राणों की इससे भीख मांगी और इसे 100 रुपए तथा उसके सारे मुनाफे के रुपए के एवेज में सोने की सलाख दे दी, फिर भी इस पापी को सब्र नहीं हुआ और ये हत्यारा अत्यंत लोभ के वशीभूत होकर कुल्हाड़ी लेकर पीपल को काटने चढ़ा। जब उसमें से खून की धार निकली तभी भी ये नहीं चेत किया, जैसे अभी आज तक नहीं देखी गई हो, तब भी ये बाज नहीं आया, नहीं माना। आखिर अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार करके इसने दम लिया। हाय पापी, तेरा नाश होगा, तूने सारे घर को बर्बाद किया है, मेरा ऐसा पति है जो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। अब तो ये इस गांव वाले सारी सत्य घटना सुनकर दंग रह गए। सभी लोग दांतें तली अंगुली दबाने लगे, कहने लगे कि अरे, हिंदुओं के शास्त्रों की बातें गप नहीं है, अक्षर अक्षर सत्य है। हिंदू लोग जो हरे वृक्ष में जीव बताते हैं और हरे वृक्ष को काटना पाप बताते हैं तथा वृक्षों में भी हमारे भांति सुख दुख का अनुभव होता है ये बताते हैं, ये पूर्ण सत्य है। और उसमें भी हिंदू धर्म वाले तो पीपल को तो साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं, इसको पूजने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं और इसके अपमान से और इसके शाप से कितनी महान हानि होती है। इसको सभी हिंदू मुसलमान उस गांव के लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया और उनको ये मान्यता सत्य लगी। हिंदू को तो सत्य लगती थी, मुसलमानों को भी सत्य लगी। सारा गांव दलवीर को धिक्कारने लगा और वह भी फूट फूट कर दहाड़ दहाड़ मार मार कर रोते हुए उसने कहा, मेरी पत्नी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य है, मैं ही अपने बेटे का हत्यारा हूँ। अब ये क्या मेरे पीपल काम आएगा, क्या मेरे ये 500 रुपए का मुझे जो है लालच हुआ। यदि मैं लोभ के वश न होकर पीपल की बात मान लेता, पीपल की दी हुई सोने की सलाख पर संतोष कर लेता, उसके साथ विश्वासघात नहीं करता, तो मेरे आंखों का तारा, प्राणों का प्यारा, इकलौता बेटा हाथ से नहीं छीना जाता, मेरा घर बर्बाद नहीं होता, मेरा बुढ़ापा नहीं बिगड़ता। खुदा के यहाँ इंसाफ है, मैंने हकीकत में बड़ा भारी गुनाह किया है, हरे पीपल को काटा है और उसके साथ विश्वासघात भी किया है, उसका नतीजा मुझे इसी जिंदगी में खुदा ने दिया है। अब मैं भूल कर भी हरे पीपल को कभी नहीं काटूंगा। बाद में उसने कभी हरा वृक्ष नहीं काटा। ये बिल्कुल सत्य घटना है भक्त जी, हमने आंखों से देखी है और ये बात सिद्ध भी करती है कि मनुष्य के समान वृक्षों में भी प्राण होते हैं और उनके साथ मानवोचित व्यवहार करना चाहिए। अपना लोक परलोक बनाना तथा अपना कल्याण करना हो उसको निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक तो सत्य सनातन धर्म की, धर्मशास्त्रों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की कृपा से ही उसे परलोक में विश्वास होगा और परलोक में विश्वास होने से यहाँ हमारी भगवान के अंदर रुचि बनेगी, पापों से हम डरेंगे, नहीं तो नास्तिक हो जाएंगे। सत्संग में, कथा कीर्तन में अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग की बातें बार बार सुनने पर हमारे हृदय में वो बैठेंगी। एक बार सुनोगे और चले जाओगे तो उसके बाद वो बात भी ऐसे ही निकल जाएगी। बार बार सत्संग में जाने से, भगवान का चरित्र आदि सुनने से परलोक का ज्ञान होगा और पापों से बचेगा और पुण्य करके परलोक बनाने का काम करेगा, इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तीसरी बात, अपना परलोक बनाने का अभिलाषी जो हो उसको भूल करके भी कभी भी गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी विद्वान पूज्य ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। गाय में, ब्राह्मण में श्रद्धा रखनी चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा सबसे बढ़कर परलोक सुधारने में सहायक होती है। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहै कोटि कुल भूसुर दोषु। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पूज्या गौ माता मरने के समय परलोक में सबका भवसागर से पार लगाने में पूरा साथ देती है, इसलिए सभी को गौ माता में भक्ति रखनी चाहिए। नित्य प्रति भगवान शालिग्राम की या शंकर जी की अपने घर में पूजा करनी चाहिए। यदि शालिग्राम की कारणवश पूजा आराधना न कर सको तो उन्हें केवल स्नान कराकर उस जल को पी लेना चाहिए। ऐसी अवस्था में उन्हें भोग लगाकर रोटी खा लेने से भी प्राणी सीधा बैकुंठ चला जाता है। पांचवा, पर स्त्री से संबंध न रखें और पर स्त्रीगामी न हो, नहीं तो परलोक जाने पर लोहे की आग से लाल की हुई स्त्री से चिपटकर महान कष्ट भोगना पड़ेगा और जिन नेत्रों से परस्त्री को बुरी दृष्टि से देखा है उन नेत्रों को परलोक में गीधों द्वारा नोचने वाला नोचने का खान भोजन बनेगा, उनको गिद्धों द्वारा नोचवाना पड़ेगा, फिर घोर नरक में और अधम योनियों में ही जाना होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, पर धन को मिट्टी गिने और परती मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। छठा, जो स्त्री जो माताएं अपना परलोक बनाना चाहती हैं, वे भूल कर भी पर पुरुषों से अपना संबंध न रखें। जो माताएं अपने पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करती और पर पुरुषों से संबंध रखती हैं, वे घोर नरक में पड़ती हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म से भूल कर भी विचलित नहीं होना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो परलोक बिगड़ जाएगा। कभी भी भूल कर भी नशीले पदार्थों का सेवन यथा मांस मदिरा आदि इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनके सेवन से बुद्धि घोर तामसिक होती है और मनुष्य का यह लोक और परलोक अवश्य ही बिगड़ता है। अपने सत्य सनातन धर्म की प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए। सनातन धर्म की छत्र छाया में रहकर अपना लोक परलोक बना सकते हैं। सनातन धर्म की प्राणपण से रक्षा करना ही परलोक बनाना और परम गति प्राप्त करने का साधन है। पतित पावनी कलिमल हारिणी माँ गंगा जी का दर्शन स्नान पूजन नामस्मरण अवश्य करते रहना चाहिए, कारण कि हिंदू के लिए अंतिम सहारा गंगाजल और तुलसी दल है। ऐसा करने से परलोक में सदगति प्राप्त होती है, अतः नित्य प्रति गंगाजल लेना चाहिए। अहर्निश श्री राम नामामृत श्री कृष्ण नामामृत श्री शिव नामामृत का पान करते रहो। भगवान नामामृत का पान करना सबको परलोक में बहुत काम देगा। यह आपका साथ में चलने वाला बहुत बड़ा धन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भाव उतर ही पारा। परलोक सुधारने के लिए ये परम आवश्यक है कि शुद्ध चित्त से श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का जहां तक बन पड़े ध्यान करो। चरणों से लेकर मस्तक तक, मस्तक से लेकर चरणों तक सगुण ध्यान करें या निर्गुण निराकार का ध्यान करें, जप करें, कीर्तन करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन मनन करें, महात्माओं के सत्संग में अधिक से अधिक समय लगावें। सनातन धर्म और भगवान नाम प्रचारक सत साहित्य का अवलोकन करें, तभी हमारा परलोक सुधरा जा सकता है। एक फ्रांस का आदमी था, कुछ वर्ष पहले की बात है, ये दूसरी बात बता रहे हैं। फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान ने अपने ईसाई मत के ग्रंथों की बड़ी गहराई से अध्ययन करने के बाद निर्णय किया कि इसमें कोई विशेष तत्व नहीं है। फिर वो अंग्रेज बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, बड़ी लगन के साथ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उसने और भी बहुत से मत मजहबों का और उनके ग्रंथों का खूब गहराई से अध्ययन किया, देखा, परंतु बहुत विचार करने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचा कि इन मत मतांतरों में, उन ग्रंथों में वास्तव में कोई गहरी तत्व की बात नहीं है। अब उसने हिंदू धर्म के ग्रंथों को देखना प्रारंभ किया और ज्यों-ज्यों अध्ययन करता गया त्यों-त्यों उसके विचारों में गंभीरता आती गई और करते 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 वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विश्व में इस धर्म सनातन धर्म के समान कोई वास्तविक सत्य धर्म नहीं है। जितने भी मजहब पंथ रिलीजन समाज दिखाई पड़ रहे हैं वे सब मनुष्यों के दिमाग की उपज है। फिर वो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अंग्रेज भारतवर्ष में आया और बहुत से विद्वानों से मिला। अंत में विश्वनाथ पुरी वाराणसी आया और यहाँ के विद्वानों से मिला। वाराणसी में उन्होंने भारत के सुप्रसिद्ध संत पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज की ख्याति सुन रखी थी। वह आया और कर्पात्री जी के चरणों में उपस्थित हुआ और उनसे भेंट की। पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज से मिलकर ये अंग्रेज महोदय बड़े प्रसन्न हुए और फिर तो कितनी बार उसके पास आता जाता रहा, उनके पास आता जाता रहा, अपनी शंकाओं का समाधान करता रहा। एक बार उन्होंने कर्पात्री जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मैं भी हिंदू धर्म की शरण लेना चाहता हूँ, आप मुझे हिंदू धर्म में दीक्षा दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। पूज्य कर्पात्री जी महाराज ने जब देखा कि वास्तव में इन्हें हिंदू धर्म का अध्ययन तो बड़ा गहरा है और सच्चे हृदय से ये सनातन धर्म की शरण में आना चाहते हैं, तो कर्पात्री जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि देखो हम प्राचीन शास्त्रीय सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम आपको प्राचीन शास्त्रीय सनातन धर्मानुसार मर्यादानुसार अपने हिंदू धर्म में स्थान दे सकते हैं। हमारे यहाँ आपके साथ खान पान रोटी बेटी का व्यवहार कुछ नहीं होगा और आपको मर्यादा में रहना होगा। उन्होंने इन सब बातों को स्वीकार कर लिया। कर्पात्री जी ने खुद ने बताया कि हमारे शास्त्रों की सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार आप अंत्यज कोटि में आते हो, जो शूद्र से भी बहुत नीचे माने जाते हैं उसमें आते हो, सो आपको हम उसी अंत्यज कोटि में रखेंगे और आपको भी अपने को अंत्यज मानकर चलना होगा और मर्यादा अनुसार रहना होगा। आपको देवी देव देवताओं के मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है और न हम आपको अपने साथ एक जगह बैठाकर खिला पिला सकते हैं और न आपको स्वयं ही ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य आदि के साथ बैठकर खाना पीना चाहिए। मंदिर के शिखर का दर्शन करने से आपका उद्धार हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध चलकर कदापि नहीं होगा। अब वो अंग्रेज बड़ा बुद्धिमान था, उसने कर्पात्री जी महाराज की सभी बातों को नतमस्तक होकर स्वीकार किया और कहा कि महाराज मैंने ये सब बातें शास्त्रों में पढ़ी हैं और मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मैं कोई हठधर्मिता से आपकी मर्यादाओं को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हठ से कल्याण नहीं होता है, मुझे तो आप जैसे महापुरुषों की बात मानकर सनातन धर्म का सिद्धांत अपने जीवन में लाना है। कर्पात्री जी महाराज ने उन्हें भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ प्रयागराज में भिजवाकर वहां पर उसका नाई के द्वारा सारे केसों का मुंडन करवाकर उसके ऊपर हिंदुत्व के प्रतीक चोटी रखवा दी और उसका पहला नाम बदल दिया और अब शिव शरण रख दिया। उसके बाद वो बहुत काल तक काशी में रहा और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई तथा वे हिंदू धर्म की अद्भुत महत्ता पर बड़े महत्वपूर्ण लेख लिखता रहा। महाराजा रीवा की कोठी में हमारी भी उनसे भेंट हुई। भारत की राजधानी दिल्ली में पूज्य कर्पात्री जी महाराज ने जिस समय एक बहुत बड़ा महान ऐतिहासिक शतकुंडी महायज्ञ किया था उसमें भारत के कोने कोने से बड़े बड़े धर्माचारी संत महात्मा विद्वान अन्य अन्य हिंदू जनता बहुत संख्या में इकट्ठी हुई थी। उसी महान यज्ञ के दर्शनार्थ काशी से हवाई जहाज द्वारा वे अंग्रेज शिव शरण जी भी दिल्ली पधारे और पूज्यपाद पंडित प्रवर महारामचरित मानस मर्मज्ञ मानस राज हंस विजयानंद त्रिपाठी जी महाराज ने वहीं सर्वप्रथम इन शिव शरण जी से हमारी भेंट करवाई। वे एकदम हिंदू वेशभूषा में थे। हम सब मिलकर उनसे बड़े प्रसन्न हुए। एक बार जब काशी में विराट सतकुंडी महायज्ञ हुआ तो उस पवित्र अवसर पर हम वहां गए हुए थे। हमने काशी में रहकर एक दिन शिव शरण जी का पता लगाकर उनसे महाराजा रीवा की कोठी में भेंट की। उन दिनों वे महाराजा रीवा की कोठी में ही रह रहे थे। हमारी उनसे खूब खुलकर बातें हुई। हमने देखा कि उनका सिर मुंडा हुआ था और सिर पर लंबी चोटी थी और मोटी भी थी। गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। उन दिनों शिव शरण जी विश्वनाथपुरी काशी में रहकर नित्य प्रति भागीरथी गंगा में स्नान किया करते। मंदिर में बिल्कुल नहीं जाते थे। दूर से मंदिर का शिखर दर्शन कर लेते थे। रुद्राक्ष की माला पर शिव नाम का जप किया करते थे। उनका बड़ा सुंदर सात्विक जीवन था। बड़ी मर्यादा से चलते थे। न तो किसी को अपने हाथ का खिलाते पिलाते और न औरों के साथ बैठकर खाते पीते थे। उनके द्वारा लिखे गए हिंदू धर्म के संबंध में विद्वत्तापूर्ण लेख बड़े चाव से हम लोग पढ़े थे। वास्तव में वे लोग बड़े खोजपूर्ण होते थे। सभी को आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्होंने अपने समस्त विद्वत्तापूर्ण लेखों में सिद्ध किया। अब खास जिस बात के लिए कह रहे कि हिंदू धर्म ही वर्तमान में एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर कही हुई बातें सब प्रकार की सत्य है। बाकी जितने भी मजहब हैं उनके अंदर इतनी गहराई से विचार नहीं हुआ है। पर लोग पुनर्जन्म इत्यादि की बातें ये बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
रामचंद्र की
जय।
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय।
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय।
आनंद कंद भगवान की
जय।
भक्त वत्सल भगवान की
जय।